ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। भारतीय जनता पार्टी नेता देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे। श्री देवेंद्र फडणवीस शिवसेना नेता और कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजित पवार ने आज राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उन्होंने महायुति के कुल 237 विधायकों का हस्ताक्षरित पत्र राज्यपाल को सौंपा। श्री फडणवीस ने बताया कि राज्यपाल ने कल शाम 5:30 बजे मुंबई के आजाद मैदान में महायुति सरकार के शपथ ग्रहण समारोह को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि शपथ लेने वाले अन्य लोगों के नाम का निर्णय बाद में होगा। उधर झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह कल होगा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार राजभवन में मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। सरकार में 11 मंत्रियों को शामिल किए जाने की संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के पुरी में ब्लू फ्लैग बीच पर इस समय नौसेना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हैं। समारोह में नौसेना कमांडो और सैन्यकर्मी 15 से अधिक जहाजों पनडुब्बियों और 40 विमानों की विशिष्ट क्षमता का प्रदर्शन कर रहे हैं। कार्यक्रम में MiG-29K और हॉक लड़ाकू विमानों तथा मार्कोस और युद्धपोतों के युद्धाभ्यास का प्रदर्शन भी किया जा रहा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत और चीन के बीच बेहतर संबंधों को बढ़ाने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता के महत्व पर बल दिया है। चीन के साथ संबंधों पर आज राज्यसभा में डॉ जयशंकर ने कहा कि आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच चर्चा तनाव कम करने और प्रभावी सीमा प्रबंधन पर केंद्रित होगी। सीमा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर डॉ जयशंकर ने कहा कि लद्दाख में सड़कों, हवाई क्षेत्रों और अन्य रसद सुविधाओं के विकास में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, जिससे सशस्त्र बलों की क्षमताएं भी बढ़ी हैं। लोकसभा में आज रेलवे संशोधन विधेयक 2024 को पेश किया गया। विधेयक का उद्देश्य रेलवे बोर्ड को वैधानिक शक्तियां प्रदान करना और निकाय की कार्यप्रणाली और स्वतंत्रता को बढ़ाना है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य रेलवे क्षेत्र में और अधिक दक्षता लाना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में भारतीय रेलवे में महत्वपूर्ण विकास हुए हैं। पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल की अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के प्रवेश द्वार पर आज हमला किया गया, जिसमें वे बाल बाल बच गए। हमला उस समय हुआ जब वे स्वर्ण मंदिर के प्रवेश द्वार पर श्री अकाल तख्त द्वारा दिए गए आदेश का पालन करने के लिए गुरुद्वारे में सेवा के लिए मौजूद थे। सूत्रों के अनुसार हमलावर नारायण सिंह खालिस्तान समर्थक बताया जाता है। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने इस हमले की निंदा की है। नई दिल्ली में श्री बिट्टू ने घटना की जांच की मांग करते हुए कहा कि एक बार फिर पंजाब में शांति भंग करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उत्तर प्रदेश के हिंसा प्रभावित संभल का दौरा करने के प्रयास पर भाजपा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आलोचना की है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस इस मामले में औपचारिकता कर रही है। उन्होंने कहा कि श्री गांधी का ये अचानक उठाया गया कदम केवल मीडिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए है। ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हर गरीब व्यक्ति को पक्का घर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने 2,95,00,000 मकान बनाने को स्वीकृति दी है। आज नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 38,00,000 घर आवंटित किए गए हैं। शारजाह में अंडर-19 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने संयुक्त अरब अमीरात को 10 विकेट से हरा दिया है। संयुक्त अरब अमीरात की टीम 44 ओवर में 137 रन पर सिमट गई। जवाब में भारत ने 17वें ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। आयुष महात्रे 67 और वैभव सूर्यवंशी 76 रन बनाकर नाबाद रहे। इस जीत के साथ भारत सेमीफाइनल में पहुंच गया है। ओमान के मस्कट में जूनियर एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता के फाइनल में आज रात 8:30 बजे भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। सेमीफाइनल में भारत ने मलेशिया को और पाकिस्तान ने जापान को हराया था। सिंगापुर में विश्व शतरंज चैंपियनशिप में ग्रैंड मास्टर डी गुकेश और वर्तमान चैंपियन चीन के डिंग लिरेन के बीच 8वीं बाजी जारी है। 14 बाजी के मुकाबले में दोनों खिलाड़ी 3.5 अंकों के साथ बराबरी पर हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।